ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 श्लोक संख्या 4। एष धर्मावृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तया गुप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिना। एष धर्मावृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तया गुप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिना। एष धर्मावृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तया गुप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिना।
पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वो महान दंडदाता भी होगा। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वह ये देखे कि सभी लोग दृढ़ता पूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को दंडित करने में भी कठोर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वरविहीन सरकार को प्रश्रय न दे। अच्छी सरकार की यही कसौटी है, धर्म निरपेक्ष सरकार के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहता है और लोगों को सभी प्रकार के अधार्मिक कृत्य करने की छूट देता है। ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग सुखी नहीं रह सकते, किंतु इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है, अपितु चोर उच्चकों को सरकार का प्रधान चुना जाता है। भला धर्म और ईश चेतना के बिना हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यह दुर्त अपने इंद्रिय दृष्टि के लिए नागरिकों से मनमाना कर खसोटते हैं। भविष्य में लोग इतने तंग हो उठेंगे कि श्रीमद् भागवत के अनुसार वे अपने अपने घर तथा गांव छोड़कर जंगल में जा बसेंगे। फिर भी कलयुग में कृष्ण भावना भावित लोगों के द्वारा प्रजातांत्रिक सरकार को कब्जे में किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो जनता अत्यंत सुखी हो जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथानुतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में जो महाराज पृथु का वर्णन किया जा रहा है, मैत्रेय ऋषि इसका श्रवण करा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो बंदी जन हैं, जो स्तुति करने वाले लोग हैं, महाराज पृथु का गुणगान करते हुए हैं, उनके अलग अलग गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो गुणों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि एष धर्म वृतां श्रेष्ठो, कि ये जो पृथु महाराज हैं, जितने भी लोग हैं या जीव हैं, धर्म के सिद्धांत का पालन करने वाले हैं, उनमें क्या है, श्रेष्ठ हैं। लोकम धर्मेन वर्तयन्। और इतना ही नहीं, बल्कि वो खुद पालन नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, दूसरों को भी इस धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में लगाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में जो आदर्श राजा है या आदर्श राजा का जो कर्तव्य है, हाँ, उसका वर्णन कर रहे हैं और साथ साथ कलयुग के जो भयावह लक्षण हैं, हाँ, उनका भी वर्णन कर रहे हैं। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जैसे ही इस धराधाम को त्यागते हैं, कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञाना दिवी सह, क्योंकि भगवान ये जगत में आते हैं हाँ जो धर्म के प्रतीक हैं, तो धर्म की स्थापना केवल दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं यदा यदा ये धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होना मतलब जीव अपना जो स्वभाव है उसको भूल जाता है। जीव का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो धर्म की ग्लानि का मतलब है कि जब जीव भगवत दासत्व को भूल जाता है, भगवत सेवा को भूल जाता है, तो अधर्म बढ़ने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदा यदा ये धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश तदात्मानम सृजाम्यहम। हाँ, तो मैं अवतरित होता हूं और धर्म के सिद्धांत की पर्सनली स्थापना करता हूं। एक तो भगवान करते हैं और उसके अलावा दूसरा कौन करता है? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं। चैतन्य चरित अमृत में चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा में गए थे, तो वृंदावन यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा आए तो वहां एक ब्राह्मण से मिले, सोनोड़िया ब्राह्मण मथुरा में। और चैतन्य महाप्रभु मथुरा में केशव का दर्शन करने के बाद बहुत भावमय नृत्य कर रहे थे, हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। सारे मथुरा वासी वहां एकत्रित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के उदंड नृत्य को देख रहे थे। तो उस समय एक ब्राह्मण भी वहां था, उस ब्राह्मण ने भी देखा और वो ब्राह्मण भी श्री चैतन्य महाप्रभु के समान नृत्य करने लगा, गान करने लगा। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ऐसा भावमय नृत्य या इस प्रकार के जो भाव के लक्षण हैं, वही व्यक्ति प्रकट कर सकता है जिस व्यक्ति जो व्यक्ति वास्तव में माधवेंद्रपुरी के संपर्क में आया है। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये जो ब्राह्मण है ये माधवेंद्रपुरी जब ब्रज में आए थे तो उनका ये शिष्य है। और क्योंकि वो एक निम्न कोटि का ब्राह्मण है, ब्राह्मण था, अलग अलग ब्राह्मणों के स्तर होते हैं, तो सन्यासी को उनके घर में वैसे देखा जाए भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भोजन ग्रहण करना स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने उनके यहाँ भोजन स्वीकारा था और चैतन्य महाप्रभु ने कहा धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। एक तो भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और दूसरा धर्म की स्थापना करते हैं तो भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त या साधु धर्म की स्थापना करते हैं अपने आचरण के द्वारा। इसलिए वास्तव में इन दोनों के पास इस धर्म की स्थापना करने का अधिकार है। लेकिन जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम को त्यागते हैं, कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञाना दिवि सहा, भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। तो भगवान जब ये जगत से जाते हैं तो सूर्य अप्रकट होने के बाद तो सारे जगत में अंधकार ही फैलेगा। तो भगवान अप्रकट हुए हैं तो भगवान ने अपने साथ धर्म ज्ञान आदि सारी जो मूल्यवान संपदा है वो तो भगवान अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन तो फिर कलो नष्टो दृशामेश पुरानो अर्को अधुनो उदित, तो फिर भगवान अप्रकट हुए हैं तो ये भौतिक जगत कलयुग के अंधकार से भर गया। तो जीवों को इस अंधकार मैं कलयुग में किसी प्रकाश की सहायता चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। भगवान अपने पास श्रीमद् भागवतम को छोड़कर गए हैं और वो भागवतम वास्तव में टॉर्च लाइट है जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति कलयुग के अंधकार से अपने आप को मुक्त करा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है और हमारा सौभाग्य है कि रोज श्रीमद् भागवतम को सुनने का या श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने का हमें मौका प्राप्त होता है। हर कोई व्यक्ति नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण करता है तो शास्त्र कहते हैं नष्ट प्रायेशो अभद्रेशो नित्यम भागवत सेवया। तो हमारे हृदय में जो अभद्र हैं वो सारे खत्म होने लगते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। तो ऐसे महान जो राजा है, राजा का मतलब ये है जो राजर्षि होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो, कि ये जो ज्ञान है महान राज ऋषियों के द्वारा परंपरा से व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। और उस समय जो ऐसे राजागण थे, क्षत्रिय थे, वो भगवान के परम भक्त थे। वो खुद ही भक्त नहीं थे बल्कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि उनके नीचे जो प्रजा है उनको भी भगवत सेवा में या भगवत भक्ति में वो एंगेज करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, राजा यदि खुद पालन नहीं करेगा तो प्रजा से कैसे अभिलाषा रख सकते हो कि प्रजा उन सिद्धांतों का पालन कर सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने ना कहला धर्म सिखाना ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय, कि आपन ना कहले खुद पालन नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए जो पृथु महाराज है वो खुद धर्म के सिद्धांतों को पालन करते थे, इसलिए धर्म भृताम श्रेष्ठ, सारे धर्म का पालन करने वालों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो बहुत गंभीरता से इस सिद्धांत को पालन करते थे। और उनकी इन गंभीरता के कारण उनके पास जो आध्यात्मिक बल है, आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उनकी जो प्रजा है उनको भी भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में या धर्म के सिद्धांतों को या धर्म के नियमों को पालन करने में लगाया। और भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम इसी की चर्चा करता है। हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस होम, हम कहेंगे दूसरों को आप दान दीजिए, लेकिन कहाँ से दान शुरू करना चाहिए, अपने आप से, शुरुआत से ही अपने से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए जो साधक है, जो कृष्ण भावना का अनुशीलन कर रहा है या जो प्रचारक है, उसके लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवत भक्ति के सिद्धांतों का, नियमों का, विधि विधानों का, गुरु साधु और शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए गंभीरता से उसका पालन करें, और तभी वास्तव में हम अधिकारी बन सकते हैं दूसरों को ये शिक्षा प्रदान करने की। प्रभुपाद वो स्टोरी सुनाया करते थे महात्मा गांधी का या एक साधु का, कि एक जो माँ थी, स्त्री थी, उनके बच्चा बहुत अधिक गुड़ खाता था, तो माँ चिल्ला चिल्ला के थक गई, बेटा गुड़ मत खाओ, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे। तो बच्चा माँ का कुछ सुनता ही नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि वो जो महात्मा गांधी है उनके पास ले जाती हूँ और वो मेरे बच्चों को बताएंगे, बेटे गुड़ मत खाओ तो तब से फिर ये ठीक हो सकता है। तो ये जो स्त्री है वो अपने बालक को लेकर उनके पास गई और उन्होंने कहा कि आप बताइए इसको गुड़ मत खाओ, तो उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते उसको लेके आ जाना, श्री जगन्नाथ सुभद्रा देवी की। तो उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते उनको लेके आ जाओ, तो ये बेचारी स्त्री वापस ले गई अपने बालक को और फिर से अगले हफ्ते ले आई, लेकर आती हैं। और तब महात्मा गांधी कहते हैं कि बेटा आज से गुड़ मत खाओ, यही एक शब्द बोला था, यही एक वाक्य बोला था। तो उस स्त्री ने पूछा, आपको इतना ही बोलना था तो उस दिन क्यों नहीं बोला? तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं भी स्वयं गुड़ खाता था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते, आपने ना कैल धर्म सिखाना ना जाए, आपने मीन्स खुद इसका हम अनुपालन नहीं करते हैं तो वास्तव में हमारे पास उसकी शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए शास्त्र ये चीज पर बल देते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे। प्रभुपाद ने कहा कि एक ब्राह्मण था, भगवान इस चीज की बहुत अधिक ये करते हैं, भगवान इस चीज पर बल देते हैं। भगवद गीता में कर्मेंद्रिय मनसा ये आस्ते मनसा स्मरण, कर्मेंद्रिय संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार समुच्यते। कि यदि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के जो भोग हैं, विषय सुख हैं, उनसे वो अलिप्त है, लेकिन मन से क्या कर रहा है, उन विषयों का, विषय भोगों का स्मरण कर रहा है, इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार समुच्यते, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, मिथ्याचारी है। प्रभुपाद ने कहा एक ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण रोज शास्त्रों का जोर जोर से पाठ करता था, श्लोकों का उच्चारण करता था, लेकिन उसके सामने ही एक जो वेश्या है उनका घर था। तो ये जो तो एक दिन हर रोज ये जो ब्राह्मण है उस वेश्या के घर की ओर देखता था, और मन से क्या करता था, इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता था, और वो सोचता था कब वो दिन आएगा, मुझे भी ऐसा भोग करने का मौका मिले। और वो वेश्या बेचारी वहां अपने घर में सोचती थी कि मेरा जीवन कितना घृणित है, नीच है, ये ब्राह्मण का जैसा जीवन मुझे मिल जाता तो मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाता। तो इस प्रकार से अचानक उस एरिया में आग लगती है, और फिर जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो प्रभुपाद ने कहा फिर यमराज आते हैं। यमराज आते तो किसके पास आते हैं, उस ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण कहता है गलत जगह आए हो आपको तो सामने वाले घर में जाना चाहिए था, मेरे घर में कैसे पहुंचे। तो फिर उन्होंने कहा सामने वाले घर में तो वैकुंठवासी, वैकुंठ के जो निवासी हैं या विष्णु दूत हैं वो पहुंचे उस वेश्या को लेने के लिए, और हम यमदूत आपको लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, उन्होंने कहा तुम तो सारे शास्त्रों को लेकर बैठते थे दिन रात, लेकिन एक ही चीज का चिंतन करते रहते थे, एक ही चीज की आकांक्षा रखते थे कि कब मुझे उस वेश्या का संग प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान भगवद गीता में इस चीज पर बल देते हुए कहते हैं कर्मेंद्रिय संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियात्मा मिथ्याचार से। तो कपटता के साथ जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहु जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेमदान। तो करोड़ों जन्मों तक हम श्रवण कीर्तन के कार्यों में लगे रहे फिर भी भगवान के चरणों में हम क्या नहीं प्राप्त करेंगे, अनुराग थोड़ा भी हम प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा कि वैष्णव का डेफिनेशन क्या है, कौन है वैष्णव, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा या वैष्णवता क्या है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा सिंप्लिसिटी इज द वैष्णविज्म, सरलता है वैष्णवता है। तो लेकिन जब हम कपटता का आश्रय लेते हैं भगवत भक्ति में आने के बाद तो हमारे लिए भगवत भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कापट्य हैले दूर बाढ़य प्रेमेर पूर, कि हृदय से जब ये कपटता दूर हो जाएगी तो कृष्ण भावना का जो पूर है या बाढ़ है वो हमारे हृदय में आ जाएगा, अन्यथा भगवत भक्ति को ग्रहण करना बहुत कठिन है। गौर गोविंद महाराज एक उदाहरण दिया करते थे, बक धार्मिक बिराड़ी वैष्णव उड़िया में कहते हैं। बक धार्मिक का मतलब है एक बगोला था, बड़ा शुभ्र वस्त्र धारण करता था, बगोला तो वैसे ही सफेद है, तो ऐसा बगोला जलाशय के किनारे या जल में जाकर खड़ा होता था और बिल्कुल ध्यानमग्न ध्यान लगा के खड़ा रहता था लंबे समय के लिए, लेकिन उसका ध्यान किस पर था, मछली के ऊपर। तो ऐसा बगुला ने सोचा, अरे ये मछली प्राप्त करने के लिए मुझे जल में धूप में खड़े रहना पड़ता है पूरे दिन, फिर भी कुछ ही मछलियां हाथ में लगती हैं, मैं अभी वैष्णव बन जाता हूँ, भक्त बन जाता हूँ। भक्त बनने के बाद तो सारी सुविधाएं अपने आप चरणों में दौड़ती है कि नहीं। लोग कहते प्रभु जी क्या सेवा करे। तो इस ये जो बगुला था उन्होंने तुरंत अपना हेडशेप वगैरह किया, सफेद वस्त्र तो धारण किए ही थे, कंठी माला धारण की, तिलक आदि लगाया, बेड़ बैग रख दी और फिर वो जाकर जल में खड़ा रहता था और खड़ा रहकर ध्यान करता था। और उसने ध्यान उसने क्या किया था, अपने जो चोंच है उसको जाली लगा दी थी। हाँ, तो अभी मछलियों ने देखा कि अरे ये क्या है, इतना परिवर्तन, बिल्कुल नॉनवेज को तो छोड़ ही दिया है इसने शायद। और मछलियां उनके आसपास घूमती रहती थी और एक मछली ने पूछा, क्या हुआ आप तो अभी वैष्णव हो गए हैं। हाँ मैं वैष्णव हो गया और आपने जाली क्यों लगाई है, क्योंकि कई बार मैं पानी पीता तो गलती से कोई मछली नहीं जानी चाहिए अंदर। तभी मछलियों को लगा अभी हमें तो फ्रीडम मिला है, हम यहाँ वहां घूम सकती है, ये हमें खा नहीं सकता, तो मछली अपने आप उनके आसपास घूमती रहती थी। फिर ये स्वामी जी जिन्होंने वैष्णव वेशभूषा धारण की थी, इधर उधर देखकर अपनी जाली थोड़ी सी साइड में करके क्या करते थे, एक मछली को डाल देते थे फिर जाली लगाते थे। तो इसको भगवान कहते हैं मिथ्याचार से उच्चते। हाँ, तो ऐसा बकत धार्मिक यदि बगोला धार्मिक भी हो जाए लेकिन अपनी कपटता की भावना का यदि त्याग नहीं करता भक्तों के संग में, हाँ तो उसका जो श्रवण कीर्तन है वो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रीति है आकर्षण है वो जागृत नहीं कर सकता। बहु जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन। तो ये बगोला ही वैष्णव नहीं बना था बल्कि और भी एक वैष्णवी बन गई थी, बिराड़ी वैष्णव। बिराड़ी का मतलब है बिल्ली। तो वहां जो बिल्ली है उनको चूहे खाने की तो उनका फेस्ट है, चूहे को पकड़ना, खेलना और निगल जाना। तो ऐसी जो बिल्ली है वो भी एक दिन वैष्णव बन गई। और वैष्णव बने क्या, उन्होंने अपना हेडशेप वगैरह करके अच्छे धोती कुर्ता या जो भी पहना होगा कपड़े आदि धारण किए और सदैव जब करते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी बिल्ली जो वैष्णव बन गई थी उसने भी अभी दूध के अलावा बाकी चीजों का त्याग कर दिया था और इधर उधर घूमते हुए घूमती रहती थी और अपने हाथ में माला चोली टांग के तिलक कंठी वैष्णव वेशभूषा, तो सारे चूहों को लगा अभी तो हमारा जीवन धन्य है, अभी तो हम इधर उधर घर में कहाँ घूम सकते हैं। तो देखा कि बिल्ली के पास जा रहे फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बिल्ली बड़ी चलाक थी, धीरे से बीच में से क्या करती थी, अचानक जैसे भूख लगी चूहे को लेकर साइड में फिस्ट करके फिर से आके हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को शास्त्र कहते हैं धर्मध्वजी, धर्म कलंकी, इन शब्दों का उपयोग शास्त्रों में किया है। बकत धार्मिक बिराड़ी वैष्णव। तो वास्तव में जब तक हम धार्मिक सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे या अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक असंभव है दूसरों को उपदेश देना या दूसरों को कृष्ण भावना प्रदान करना। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक कठोर थे इस चीज के लिए। चैतन्य भागवत में एक लीला आती है, क्यों व्यक्ति इस मिथ्याचार को धारण करता है, एक तो अपने इंद्रिय भोगों की जो लालसा है उनको पूर्ति करना चाहता है और दूसरा है झूठा ही मान सम्मान आदि प्राप्त करने का अभिलाषी रहता है। श्रील हरिदास ठाकुर का वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में एक बहुत वंडरफुल लीला लिखते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि हरिदास ठाकुर एक दिन जा रहे थे एक धनाढ्य व्यक्ति के घर के सामने से, तो देखा है उस धनवान व्यक्ति के घर के सामने एक जो सपेरा है, बिल बजाता है, सांप का खेल करता है, वो अपना कुछ गाने गा रहा था, ड्रम्स आदि बज रहे थे, मंजीरे बज रही थी, और वो सांप नृत्य कर रहा था इस सपेरे के इशारे के अनुसार, और ये सपेरा कुछ गीतों का उच्चारण कर रहा था। तो हरिदास ठाकुर वहां से गुजर रहे थे, हरिदास ठाकुर ने देखा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, और वो जो सपेरा है भगवान की काल्य लीला का वर्णन कर रहा था। तो हरिदास ठाकुर ने जैसे सुना कि मेरे प्रभु का गुणगान किया जा रहा है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कालिया धाम में कालिया जो ईर्ष्या से भरा हुआ है उसका उद्धार किया, इस लीला जैसे उस सपेरा गा रहा था उसके गान से हरिदास ठाकुर के कानों में गई, तो हरिदास ठाकुर भावावेश में आकर आपने आपको संभाल नहीं पाए। अष्ट सात्विक भाव के जो लक्षण हैं वो हरिदास ठाकुर प्रकट करने लगे, और वहां ही उस भीड़ के बीच में जाकर नृत्य करने लगे, रोने लगे, मूर्छित होने लगे कृष्ण के स्मरण से, कृष्ण लीला की स्फूर्ति से। तो फिर सारे जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित हुए, उनके प्रति रिस्पेक्ट और आदर की भावना सबके हृदय में जाग उठी, इवन जो सपेरा था वो भी उनके चरणों में गिरने लगा, उनका सम्मान करने लगा, क्योंकि वो पहचान गया कि ये वास्तव में एक शुद्ध भक्त के प्रेम के लक्षण है। तो हरिदास ठाकुर थोड़ा सा फिर से बाह्य दशा में आए और वो फिर से अपने स्थान चलने लगे, निकल गए। तो उसी भीड़ में एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने सोचा ये तो बहुत अच्छी चीज है, इतने लोग इनका मान सम्मान दे रहे, चरण की धूलि ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो जो मलेच्छ यवन मुस्लिम उसके लिए लोग इतना सम्मान आदि दे रहे हैं, यह है शुद्ध भक्त के प्रति ईर्ष्या का रिजल्ट क्या है। तो ये ब्राह्मण के हृदय में एक शुद्ध भक्त के प्रति ईर्ष्या की भावना जाग उठी, और इसने क्या किया, तुरंत ही जंप लगाए उस ग्रुप के बीच में, और वहां जंप लगाकर ये भी अपने प्रेम के लक्षण प्रकट करने लगा, अश्रुपात करने लगा, दिखावे का नाचने लगा, भाव के विकार प्रकट करने लगा। तो वो जो ब्राह्मण है, जो सपेरा था, वो समझ गया कि ये केवल धोखाधड़ी कर रहा है, ये केवल अपने मान सम्मान का भूखा है, जिसके कारण ये नृत्य कर रहा है लोगों की झूठी प्रशंसा प्राप्त करने हेतु। तो एक दंडा लिया सपेरे ने, एक लंबे से स्टिक ली, दंडा लेकर सपेरा नाच रहा था, वो ब्राह्मण इतना पिटाई करने लगा, उसके हाथ पांव कमर सब पर सब पिटाई करते जा रहा था। ब्राह्मण अभी अपने भाव के विकार ज्यादा समय नहीं प्रकट कर रहा था, वहां से अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग गया। तो सारे लोगों ने कहा एक ही समय में हमने देखा, उस सपेरे को पूछा कि दो प्रकार के लोग आगे नृत्य कर रहे थे, उस ठाकुर महाशय हरिदास को तो आपने इतना सम्मान आदि दे दिया, लेकिन ये बेचारा ब्राह्मण इसके प्रति क्यों नहीं। उन्होंने कहा हरिदास ठाकुर जैसे ही नाच रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे, उनको देखने मात्र से मेरे हृदय में प्रशंसा का भाव, आदर का भाव स्वाभाविक प्रकट हो रहा था, क्योंकि वो वास्तव में भगवान के प्रेमी है, भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण है ये किससे ईर्ष्या करके, दिखावा करके झूठी प्रशंसा चाह रहा था हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करके। हाँ, तो इसके साथ यही हालत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मिथ्याचार है, कपट की भावना है, उसका हम भगवत भक्ति में आने के बाद भी जब आश्रय ग्रहण करते हैं तो हम कभी भी भगवान के प्रेमी नहीं बन सकते। बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात के लिए बहुत कठोर थे। चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती है छोटा हरिदास की, आप सबने सुना होगा, हम रिपीट करते हैं फिर भी। तो छोटा हरिदास की लीला से चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षा को बहुत अधिक इस सिद्धांत की बहुत कठोरता से स्थापना करते हैं। हाँ, आपने ना कहला धर्म सिखाना ना जाए, खुद हमें उस सिद्धांत को अंगीकार करना चाहिए और तब वास्तव में दूसरों को शिक्षा देने का अधिकारी बनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो उस समय अलग अलग जो वैष्णव गण है चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने के लिए बुलाते थे प्रसादम के लिए। तो उस लीला के कुछ श्लोक के साथ मैं रीडिंग करूंगा। एक दिन आचार्य प्रभु रे कैला निमंत्रण घरे घरे भात करी करे विविध व्यंजन। जो भगवान आचार्य हैं उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया और उन्होंने अपने घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, राइस आदि। छोटा हरिदास नाम प्रभु र कीर्तनिया तहारे कहे न डाकी आपने हानिया। तो उन्होंने उस भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास को बुलाकर कहा कि आप क्या करो, मोरना में शिकी माहे तीरा बगिनी स्थाने गया शुक्ल चावल एक माना आना हमा गया। उन्होंने कहा भगवान आचार्य ने, हे छोटा हरिदास जो वैरागी थे विरक्त थे, उनको बुला के कहा कि तुम क्या करो, मेरा नाम लेकर शिकी माहिती जो भगवान के पार्षद है उनकी जो भगिनी है माधवी देवी उनकी जो सिस्टर है बहन है उनके पास जाओ और मेरा नाम लेकर बहुत अच्छे सफेद चावलों को मांग के लेकर आओ। माहिती र भगिनी र नाम माधवी देवी वृद्धा तपस्विनी आर परम वैष्णवी। तो ऐसी जो माधवी देवी है वो वृद्धा तपस्विनी और महान वैष्णवी थी जिनका नाम माधवी देवी था। प्रभु लेखा करे चारे राधिकार गान जगतेर मध्य पात्र साढ़े तीन जान। तो चैतन्य महाप्रभु साढ़े तीन लोगों को क्या करते थे, समझते थे कि ये साढ़े तीन लोग श्रीमती राधिका के क्या है, पार्षद है, नित्य सेवक है। स्वरूप गोसाई आर राय रामानंद शिकी माहिती तीन तार भगिनी अर्धजन। तो ये तीन कौन कौन है, कृष्णदास कविराज कहते हैं स्वरूप दामोदर रामानंद राय शिकी माहिती और शिकी माहिती की जो बहन है माधवी देवी, स्त्री होने के कारण उनको आधा गिना गया है इसलिए उन्होंने कहा साढ़े तीन है। तारठाई तंडुल मागे अनिल हरिदास तंडुल देखी आचार्य र अधिक उल्लास। तो जब ये छोटा हरिदास उनके पास गए और उनसे उन्होंने शुक्ल चावल मांग कर लाए चैतन्य महाप्रभु को भोजन बनाने के लिए भगवान आचार्य के आदेशों के अनुसार, और जब ये भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास ने लाए हुए चावलों को देखा तो वो बहुत अधिक उल्लासित हो गए, आनंदित हो गए। स्नेहरांदिल प्रभुर प्रिय जेवेंजन देवुल प्रसाद आद्य चाकी लेंबू सलवन। तो उन्होंने उन चावलों को लेकर कई प्रकार के व्यंजन बनाए और इतना ही नहीं चैतन्य महाप्रभु उनके घर आने वाले हैं, जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने जगन्नाथ का प्रसाद मंगाया, उसके साथ उन्होंने घिसा हुआ जो अदरक होता है वो भी रखा डाइजेशन के लिए, उसके साथ नमक भी रखा चैतन्य महाप्रभु के लिए। मध्यान्ह आसिया प्रभु भोजन वसिला शाल्यान्न देखी प्रभु आचार्य पूछिला। तो दोपहर के समय में श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए जाया करते थे समंदर में और उसके बाद जाकर भोजन या प्रसाद ग्रहण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान आचार्य के घर में गए और उनको नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन शुक्ल चावलों को देखा और महाप्रभु ने तुरंत पूछा, उत्तम अन्न यत तंडुल कहते पाइला आचार्य कहे माधवी पाशम मागिया अनिला। तो महाप्रभु ने कहा, अरे भगवान भगवान आचार्य कहां से तुमने इतने सुंदर शुभ्र चावल तुम लेके आए हो। तो भगवान आचार्य कहते हैं कि माधवी देवी के घर से हम मांग कर लाए हैं
प्रभु कहे को न जाए मागी आनिल छोट हरिदासेर नाम आचार्य कहिला।
तो आचार्य ने कहा, महाप्रभु ने पूछा कि कौन गया था लाने के लिए, किसने मांग कर लाया। चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा तो भगवान आचार्य कहते हैं, ये मांगने के लिए तो ये छोटा हरिदास हाँ गए थे।
अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजन करिला निज ग्रहे आसी गोविंदेर आज्ञा दिला।
तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां कुछ बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आनंद और प्रीति के साथ उन व्यंजनों को या भोजन को स्वीकारा और फिर अपने स्थान गंभीरा में वो चले गए जहां वो निवास करते थे, काशी मिश्र का जो आलय है घर है वहां जाकर उन्होंने अपने जो पर्सनल सेवक हैं गोविंद को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी?
आज है ते यही मोर आज्ञा पालिवा छोटा हरिदास यहाँ आसी देना दिवा।
हे गोविंद, आज से मेरी इस आज्ञा का पालन करो कि ये जो छोटा हरिदास है हाँ उसको यहाँ मेरा जो निज ग्रह है गंभीरा है यहाँ उनको आने मत दो, उनके लिए एंट्री नहीं है।
द्वारमाना हरिदास दुखी है लमने किला गया द्वारमाना केह नहीं जाने।
तो ये छोटा हरिदास ने सोचा या सुना कि उनके लिए तो मनाई है चैतन्य महाप्रभु के आवास में जाना या प्रवेश करना, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये मेरे साथ हो रहा है और क्यों मना किया जा रहा है।
तीन दिन हरिदास करे उपवास स्वरूपादि सबे पूछिला प्रभु रकाश।
तो तीन दिन तक ये जो छोटा हरिदास थे उन्होंने उपवास रखा और उन्होंने स्वरूप दामोदर के पास जाकर पूछा कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ मुझसे प्रसन्न नहीं है, क्यों मुझे वो आपने निज ग्रह में प्रवेश करने से उन्होंने मनाई की है।
कौन अपराध प्रभु कैला हरिदास किला गया द्वार माना करे उपवास।
तो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि क्या अपराध किया है इस छोटा हरिदास ने और क्यों आपने उनको आने के लिए मना किया है। वो बेचारा छोटा हरिदास तीन दिन से निर्जला उपवास कर रहा है।
प्रभु कहे वैराग्य करे प्रकृति संभाषण देखी देना पारो आमे ताहर वदान।
चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत की स्थापना करने के लिए कि हमें कितना सरल वृत्ति का होना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा कि वैरागी हैया करे प्रकृति संभाषण, कि विरक्त होकर भी एकांत में प्रकृति या श्री से संभाषण करता है। देखी तेना पारिया में तहार वदन, मैं ऐसे व्यक्ति के मुंह को देखना नहीं चाहूंगा। मिथ्याचार सोचते
दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारु प्रकृति हरे मुने रपि मान।
उन्होंने कहा कि ये जो इंद्रिया है ये इतनी प्रबल है विषयों को भोग करने के लिए, इवन जो मुनिगण भी है यदि वो उड़ को क्या कहते हैं लकड़ से बनी हुई जो प्रतिमा है उनको देखकर भी मुनि का मन क्या हो सकता है, चंचल हो सकता है।
शूद्र जीव सब मर्कट वैराग्य करिया इंद्रिया चलाया बोले प्रकृति संभाषिया।
वास्तव में जो ये नीच जीव है शूद्र जीव क्या कर रहा है, केवल वैराग्य के नाम पर मर्कट वैराग्य धारण कर रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दो वैराग्य का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं एक है मर्कट वैराग्य और दूसरा है स्मशान वैराग्य। मर्कट वैराग्य क्या है? मर्कट का मतलब है बंदर, बंदर विरक्ति प्रकट करता है। विरक्ति क्या है? कभी एक तो घर नहीं बनाता, कभी इस टहने से उस टहने में रहता है, विरक्त है। दूसरा कभी कपड़े नहीं पहनता, लेकिन भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए एक डजन जो फीमेल मंकीज है उनको वो रखता है। और दूसरा है उसी प्रकार का फल्गु वैराग्य या फिर जो स्मशान वैराग्य है। स्मशान वैराग्य का मतलब भी है जो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, फल्गु वैराग्य। तो महाप्रभु ने कहा केवल अपने इंद्रियों को चराने के लिए, जैसे गायों को चराने ले जाते हैं, तो इंद्रियों को चराने के लिए ऐसा मरकट वैराग्य धारण किया है। और ऐसे मरकट वैराग्य क्या करते हैं, एकांत में समय निकालकर स्त्रियों से चर्चा करते हैं, संभाषण करते हैं। एतकहे महाप्रभु अभ्यंतरे गेला गोसाई आवेश दे की सबे मौन हैला। चैतन्य महाप्रभु इतना ही बोलकर अपने रूम के अंदर चले गए और सारे जो भक्त हैं या जो स्वरूप दामोदर हैं ये महाप्रभु का कठोर वाणी को सुनकर बिल्कुल शांत हो गए। आरदिन सबे मेले प्रभु रक्षरणे हरिदास लागी के छु कैला निवेदने। फिर दूसरे दिन स्वरूप दामोदर तो पहले अकेले गए थे, लेकिन बाद में सारे जगन्नाथपुरी के जो प्रमुख वैष्णव हैं वो हरिदास के लिए महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया। अल्प अपराध प्रभु करह प्रसाद एवे भिक्षा हैलना करिबे अपराध। उन्होंने कहा थोड़ा तो अपराध है, अब इसको क्षमा करो। एवे शिक्षा हैलना करिबे अपराध, इससे हम सबको शिक्षा मिल गई है, अभी फिर से हम उस अपराध को दोहराएंगे नहीं। इन वैष्णवों ने कहा प्रभु कहे मोरा वशा नहे मोरा मान प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे दर्शन। महाप्रभु ने कहा मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं तो ऐसे व्यक्ति का मुख देखना नहीं चाहता हूँ। निज कार्य जहाँ सबे छाड़ था कथा पुनः जदि कह आमा ना देखी बे यथा। उन्होंने कहा महाप्रभु ने कहा कि आप क्या करो, ये सब चीजें छोड़ दो, अभी बातें करना, आप जाओ अपने अपने स्थानों में और अपना अपना कार्य करो। हाँ, और फिर से आप मेरे पास इस प्रकार से आओगे निवेदन करने के लिए तो आप मुझे जगन्नाथपुरी में देखोगे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला से इसी चीज की शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से एक जो साधक है या प्रैक्टिशनर वैष्णवा है या डिवोटी है उसको इस वृत्ति से सदैव दूर रहना चाहिए, और जिसके द्वारा ही ऐसे यदि उसका जीवन रहेगा, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, भगवान का जो कृपा है वो उसके लिए अनुकूल हो सकती है। तो राजा पृथु के इस चरित्र में वर्णन करते हुए जो ये बंदी जन है जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो इसी की एक प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि राजा पृथु धर्म का पालन करने में सर्वश्रेष्ठ है और वो खुद पालन कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रजा से भी उस धर्म के सिद्धांत का पालन करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं या लगवा रहे हैं। तो ऐसा राजा होना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में राजा परीक्षित का वर्णन आता है। परीक्षित महाराज ने देखा क्षत्रिय का मतलब है क्षत त्रायति इति क्षत्रिय, क्षत हानि से जो बचाता है या जो रक्षा करता है प्रजा की, केवल शारीरिक रक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उनकी रक्षा करता है, आध्यात्मिक रूप से भी उनका पालन करता है। जैसे परीक्षित महाराज ने देखा, परीक्षित महाराज हर रोज निकल पड़ते थे, कहाँ निकल पड़ते थे, रोज वो निकलते थे बाहर अपने प्रजा को देखने के लिए, क्योंकि वो प्रजा का पालन एक संतान के भांति करते थे। और वही ऋषभदेव ने कहा कि वही माता पिता बनने का अधिकारी है या गुरु बनने का अधिकारी है या राजा बनने का अधिकारी है, लीडर या प्रमुख प्रधान बनने का अधिकारी है, जो अपने ऊपर निर्भर जो लोग हैं उनको कृष्ण भावना प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब निकले तो उन्होंने देखा कि एक जो गाय है वो रो रही है, अश्रुपात कर रही है, और बैल तीन पग उनको नहीं है जिनके ऊपर मारा जा रहा है एक शूद्र के द्वारा जिसने राजा का वेश धारण किया था। तो परीक्षित महाराज पहचान गए ये तो कली है, तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज राजा भी इस प्रकार से होना चाहिए, जो युवक कलि को भी दंडित करने का अधिकार या सामर्थ्य रखता है और अपनी प्रजा को रक्षा प्रदान करता है कलि के प्रभाव से। तो इस प्रकार से पृथ्वी महाराज का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आदर्श सरकार बन सकती है लेकिन कृष्ण भावनामृत भक्तों के द्वारा बनाई जा सकती है, और ऐसी आदर्श सरकार बने तो सारी जनता शाश्वत रूप से सुखी हो सकती है। प्रभुपाद के समय में भी एक विदेशों में एक इस्कॉन का दल बनाया था, पार्टी बनाया था, तो लेकिन वो इतना प्रभावशाली होने लगा कि इनका ऑफिस ही बॉम्ब से उड़ा दिया। डिवोटीज का ये जो पार्टी जहां इनका ऑफिस होता था, जहां से चलायमान होते थे, कार्य करते थे, तो कलयुग में सारे भौतिकतावादी या चोर उचक के शूद्र ही राजा बने हैं, तो कैसे सोचा जा सकता है कि समाज में सुख या शांति या भगवत तत्व का विकास हो, यह संभव है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्तों का ये प्रयास होना चाहिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा हया तारे यही देश, जिसको भी आप देखते हो मिलते हो उसको कृष्ण का उपदेश दो और गुरु बनो, इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, कृष्ण भावना देते रहो। तो जितना अधिक हम कृष्ण भावना दूसरों को देंगे उतना ही अधिक कृष्ण भावना भावित हम होने लगेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का यही वास्तव में उद्देश्य है। श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य क्या है कि श्रीमद् भागवतम को हम आश्रय लेते हैं तो स्वयं कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और फिर हमें यह सामर्थ्य आता है कि हम दूसरों को भी कृष्ण भावना प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पतित पावन।